आप हैं SBS हिंदी के साथ।
भारत में किसानों ने कृषि कानूनों के बदलाव के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। न्यू साउथ वेल्स में बुशफायर अनुदान राशि में सामने आया धोखाधड़ी का मामला। और भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को कहा अलविदा। अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के पिछले साल की बुशफायर में पीड़ितों के लिए अनुदान राशि में धोखाधड़ी करने के लिए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले के आरोपी 6 पुरुष और 3 महिलाएं रेबल्स बाइकी गिरोह से जुड़े हैं। समूह ने न्यू साउथ वेल्स सरकार की अनुदान योजना के माध्यम से कथित तौर पर कुल $7,00,000 का दावा किया और सफलतापूर्वक $1,13,000 प्राप्त भी किए। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट क्रिशलो का कहना है कि 2019-2020 के बुशफायर सीजन की तबाही के मद्देनजर कथित अपराध विशेष रूप से जघन्य है।
These grants were meant to enable businesses on the south coast to remain open to provide services to the community and employment, which some of these businesses have failed due to the losses from the bushfires and then compounded by the COVID disaster. These grants were meant to assist that and have been cynically stolen by this group.
भारत की रिपेट्रिएशन फ्लाइट से तस्मानिया पहुंचा एक और यात्री कोविड पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति पिछले सप्ताह एक महिला और 2 बच्चों के साथ भारत से लौटा था और फिलहाल एकांतवास में है। ये एक ही परिवार से चौथा कोरोना वायरस मामला है, क्योंकि तस्मानिया से पहले से ज़्यादा रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स आ रही हैं। प्रीमियर पीटर गुडने का कहना है कि वह संक्रमण की चिंता को समझते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि राज्य इसे संभाल सकता है।
Our systems are robust. There has been an enormous amount of work that has gone into this. We have drawn from the experience in other states to ensure that our system is robust and as tight as it possibly can be.
प्रीमियर ने 11 दिसंबर शाम 5 बजे के बाद से स्टैंड अप ड्रिंकिंग और डांसिंग की अनुमति की घोषणा भी की। क्वींसलैंड के होटलों में एकांतवास कर रहे लोग कोविड 19 संक्रमण की बढ़ती चिंता को देखते हुए अब ताज़ी हवा के उपयोग के लिए ब्रेक नहीं ले पाएंगे। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग का कहना है कि होटल एकांतवास में अधिक संक्रमण सामने आ रहे हैं और राज्य में कुल 22 कोरोना वायरस मामले हैं। होटल एकांतवास में 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें विदेश से आए 3 यात्रियों को संक्रमित पाया गया है। डॉक्टर यंग का कहना है कि होटल एकांतवास में नियमों के उल्लंघन से अन्य राज्यों में प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए वह क्वींसलैंड के लिए सतर्क रहना चाहती हैं।
And Queenslanders have been really, really sensible to date. That's why we've had the fantastic response in Queensland that we've had. We have not seen transmission.
आपको बता दें कि क्वींसलैंड ने भी घोषणा की है कि सोमवार यानी 14 दिसंबर से पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब जैसे इंडोर स्थानों पर डांस की अनुमति होगी। न्यू साउथ वेल्स में विदेश से आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन कोई भी नया स्थानीय कोरोना मामला सामने नहीं आया है। राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया दिवस के लिए अपनी पारंपरिक सिडनी हार्बर योजनाओं को रद्द कर दिया है और घोषणा की है कि परिपत्र की पहुंच सीमित होगी। स्वास्थ्य मंत्री बैरेट हैजर्ड का कहना है कि क्योंकि विदेशों से अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि बाहर से आए यात्रियों को होटल एकांतवास में अभी रखा जाए।
When we have the disaster that's going on in so many countries overseas and so many Aussies coming back from those countries and landing here in New South Wales. So very exciting day, another day of no COVID transmission.
चीनी दूतावास ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी सरकार ऑस्ट्रेलियाई आयात को रोक रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार असहमति जारी है। लकड़ी पर लगे प्रतिबंधों और लैंप पर आए नए प्रतिबंध के बाद संघीय व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के निर्यातकों को चीन के पास जाने के जोखिम को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन ने अस्वीकार्य व्यवहार प्रदर्शित किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने फ्री ट्रेड समझौते को कमजोर करता है। हालांकि उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
We've been clear all year of our willingness to have those discussions. They won't see us compromise in relation to the types of principles we adopt around Australian values or the protection of our national interests, just as we don't ask China to compromise in relation to their national interest issues. But clearly, the most sensible thing that can happen is for parties to talk.
फेडरल होम अफेयर्स मिनिस्टर पीटर डटन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आतंकवादी खतरों की जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में बदलाव आएगा। श्री डटन ने स्काई न्यूज से कहा कि वह चाहते हैं कि जांच राइट विंग चरमपंथियों की गतिविधियों पर प्रकाश डाले और ये बताए कि उनका मुकाबला कैसे करें। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चरमपंथी आंदोलनों और कट्टरपंथ की जांच का आदेश दिया जब लेबर पार्टी ने आतंकी कानूनों की समीक्षा करने की मांग की, जो कि राइट विंग से जुड़े हुए हैं।
So I hope that there's more information that's able to be provided through that committee report. But also, I think it's important for us all the time to say if there's a better way that we can do things, then we're very open to it.
आपको बता दें कि समिति को अप्रैल के अंत तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अब खबरें भारत से। कृषि कानूनों में संशोधनों को लेकर भारत सरकार के प्रस्ताव को आंदोलन कर रहे किसानों ने नामंजूर कर दिया। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हम जियो के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे और साथ ही साथ 14 तारीख को जिला मुख्यालयों को घेरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकॉट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा, 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे।
और नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इंडिया गेट के पास सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत बन रहे नए भवन के इस कार्यक्रम में बस प्रतीकात्मक तौर पर शिलान्यास होगा, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं होगा क्योंकि इस संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि संसद का ये नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। और अब बात करते हैं डॉलर के हाल की। आज यानी गुरुवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.05 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 75 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पार्थिव ने 18 साल के करियर में 25 टेस्ट मैच खेले, 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। 17 साल की उम्र में पार्थिव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। अपने 25 टेस्ट में पार्थिव ने 6 अर्धशतक जमाए और साथ ही साथ 38 वनडे में 4 अर्धशतक जमाने में सफल रहे। पार्थिव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी और सभी क्रिकेटरों को धन्यवाद कहा जिनके साथ वो खेले। दक्षिण अफ्रीकी टीम 14 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। जनवरी फरवरी 2021 में दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान दौरे पर 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी को होगा, वहीं T20 सीरीज का पहला मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी टीम आखिरी बार पाकिस्तान दौरे पर 14 साल पहले यानी कि साल 2007 में गई थी। और अब मौसम का हाल। और अब बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां दिन में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बढ़िया धूप खिली रहेगी, यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, तो यहाँ भी बादलों का आना जाना लगा रहेगा। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, तो यहाँ हल्की बारिश की संभावना रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी बढ़िया मौसम चल रहा है, हालांकि शाम को बारिश की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला चल रहा है, तापमान रहेगा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां धूप खिली रहेगी। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हम हैं।